सुर्खियों में
नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष पाठक। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के मुद्दों और वहां पर स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव करवाने की चुनाव आयोग की तैयारियों पर। हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रही हैं वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन जी। अदिति जी, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जो चुनाव प्रचार है वो जोर शोर से जारी है। दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल जो आमने सामने हैं, आज की ग्राउंड रियलिटी की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा मुद्दा है जो पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को सबसे ज्यादा प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है?
पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में बहुत से मुद्दे जब इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ था तब सामने आए थे। आपको याद होगा कि रूलिंग तृणमूल कांग्रेस जो है वो 3 टर्म्स पूरी कर चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा मुद्दा उस वक्त था, करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा था। भाजपा जो मेन ऑपोजिशन पार्टी उनको टक्कर दे रही है, कांग्रेस और लेफ्ट अभी श्रिंक हुए हुए हैं वेस्ट बंगाल में, तो भाजपा जो मेन उनको टक्कर दे रही है उसका कैंपेन नैरेटिव भी इनिशियल डेज में जो था वो हम देख रहे थे कि सिंडिकेट राज जो है, एलिजिट सिंडिकेट राज वेस्ट बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस की राज में, करप्शन का जो इश्यू है, फिर स्कूल जॉब्स का जो रिक्रूटमेंट स्कैम वहां चल रहा है, बहुत सारे ट्राइबल क्षेत्रों को लेकर जो ट्राइबल आइडेंटिटी के मुद्दे वहां चल रहे हैं, प्लस इन्फिल्ट्रेशन जो एक मुद्दा भाजपा की तरफ से रहा ही है। और जहां तक तृणमूल कांग्रेस का सवाल है, हम जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का सबसे बड़ा जो प्लैंक रहता है वो बंगाली अस्मिता को लेकर रहता है। मां माटी मानुष के प्लैंक पर ममता बनर्जी ने सत्ता हासिल की थी, वामपंथियों को वहां डिफीट करके हिस्टोरिक जीत हासिल की थी जब पहली बार वो जीती थी 3 टर्म पहले, और उसी एजेंडा को आगे ले गई हैं। उन्होंने यही कहा है कि हम वेलफेयर पॉलिटिक्स पर ध्यान दे रहे हैं, हम तमाम जो सोसाइटी के सेगमेंट्स हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। एक चीज जो ध्यान देने वाली है वो रूलिंग तृणमूल कांग्रेस ने बहुत सारे वेलफेयर इनिशिएटिव्स के तहत, जिसको कहते हैं कैश बेनिफिट ट्रांसफर का प्रावधान, वहां पहले ही किया हुआ है। मैं ये कहना चाह रही हूं कि इनिशियल डेज में जो ये कैंपेन के मुद्दे सामने थे वो धीरे धीरे हटके जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स है वेस्ट बंगाल में वो एक बड़ा मुद्दा उभर के आया, और हम देख रहे हैं कि लड़ाई लगातार सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ी गई और फाइनली वहां पर डिलीशंस हुए हैं, और जो भी वो मुद्दा बना भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच, एक बहुत बड़ा एक वोटर डिलीशन और SIR का मुद्दा रहा, जिसको कहते हैं कि आइडेंटिटी को लेकर एक बड़ा नैरेटिव दोनों पार्टीज ने खड़े करने की कोशिश की, जहां भाजपा ने यह कहा कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स को हटाना चाहते हैं और जो जेन्युइन इमिग्रेंट्स हैं उनको डरने की कोई बात नहीं, वहीं तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर भी हैं उन्होंने ये कहा कि भाजपा सदियों से जो वोट करते आ रहा है वहां पर बंगाल में उसको हटाना चाहती है। मुझे ऐसा लगता है आइडेंटिटी और इन्फिल्ट्रेशन और इलीगल इमिग्रेशन और SIR इस वक्त बहुत बड़े मुद्दे बन गए हैं, और जो स्पेशल सेशन अभी 3 दिन पहले खत्म हुआ है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल 2026 जो महिला आरक्षण को पहले लाना चाहता था 2029 के इलेक्शन तक, वो डिफीट हो गया है, तो नेचुरल सी बात है कल प्रधानमंत्री ने देश के नाम संदेश दिया है उस बात को लेके, उसमें अटैक किया है ना सिर्फ कांग्रेस को बल्कि रीजनल पार्टीज को भी, तृणमूल कांग्रेस को, DMK को और सपा को, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा आज की डेट में उभर गया है।
अदिति जी, घुसपैठ अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, दो वर्जन है अगर हम पॉलिटिकली देखें, और पश्चिम बंगाल का एक इतिहास रहा है कि कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया, बीच में फिर हमने देखा कि उस दौर में एक समय ऐसा भी आया था जो बार बार लगातार राष्ट्रपति शासन लग रहे थे, फिर लेफ्ट किस तरह से आया और लेफ्ट से किस तरह से ममता बनर्जी ने संघर्ष किया, लेकिन उनको संघर्ष करने के लिए यानी लेफ्ट से लड़ने के लिए कांग्रेस का साथ छोड़कर अपनी एक नई राजनीतिक दल तृणमूल कांग्रेस के नाम से बनाना पड़ा था उस समय। अब इतने लंबे समय तक उनके शासन में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी जो घुसपैठ का मुद्दा बना रही है, तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि वहां के असली मतदाताओं को हटाने की साजिश रची जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस दोनों किन किन तर्कों के साथ मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है ये घुसपैठ वाले मुद्दे पर, और कितने नीचे तक वो अपने संदेशों को पहुंचा पा रहे हैं?
देखिए, जो इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा भाजपा उठा रही है वो आज का तो उठा नहीं रही, वेस्ट बंगाल में बहुत देर से ये बात चल रही है। जब जब गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेस्ट बंगाल के दौरे पे गए हैं तब तब उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन और इलीगल इमिग्रेंट्स की बात छेड़ी है। आपको याद होगा कि अभी जब भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया बंगाल में, अप्रैल 10 को, तो वहां पर बहुत क्लियरली एक उन्होंने रोड मैप दिया. उन्होंने ये कहा कि डिटेक्ट, डिटर्मिन और डिलीट करके, डिटेक्ट, डिटर्मिन और डिपोर्ट करके हम बहुत जल्दी एक टाइम बाउंड प्लान के तहत जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो सेटल्ड हैं बंगाल में, उनको हटाएंगे. जब मैनिफेस्टो रिलीज हुआ, उसके एक ही दिन बाद मुझे याद है कि प्रधानमंत्री की एक बहुत बड़ी रैली हुई जांगीपुर मुर्शिदाबाद में. वहां प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में भाजपा की बात रखी और उन्होंने ये कहा कि जो रूलिंग तृणमूल कांग्रेस है वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स करके इनफिल्ट्रेटर्स की सपोर्ट लेके सत्ता में बनी हुई है. और अपनी तरफ से उन्होंने वोटर्स को ये प्रभावित करने की कोशिश की कि ये एक राजनीतिक मुद्दा होने की बजाय ये एक एक्चुअली राष्ट्र की सुरक्षा का इश्यू है, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है. भाजपा ने हमेशा ये कहा है. और इसी संदर्भ में आपको याद होगा संतोष जी कि भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में यह भी प्रॉमिस किया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बंगाल में अगर भाजपा सत्ता में आती है तो 6 महीने के अंदर अंदर एक प्रावधान के तहत लागू करने का काम करेगी. और उन्होंने ये कहा है कि हम किसी भी कीमत पर एक भी इलीगल इमिग्रेंट को बंगाल में रहने नहीं देंगे. ये तो भाजपा की बात हो गई और यही उनका पुश है. वो ये बताना चाहते हैं लोगों को कि ये किसी समुदाय विशेष या किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है और जो भी इलीगल पाया जाएगा उसको देश से निकालने का काम किया जाएगा. वहीं अगर आप तृणमूल कांग्रेस का नैरेटिव देखें इसी मुद्दे पर, तो नेचुरल सी बात है वो एक, जिसको कहते हैं कि नेचुरली फियर मॉन्गरिंग का पॉलिटिक्स अपना रहे हैं. वो लोगों के पास जाके ये कह रहे हैं कि भाजपा और जो SIR के माध्यम से, ये जो SIR का मुद्दा चल रहा है, जो लोग डिलीट हुए हैं, कि उनकी सिटीजनशिप पर भी सवाल है. नेचुरली वो सेकेंड लेवल तो वही आ जाती है. और हमने ये देखा है कि ऑफ लेट तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने यह भी कहना शुरू किया है कि जो डिलीटेड वोटर्स हैं उसमें ना सिर्फ मुसलमान हैं पर हिंदू भी हैं. अब बीजेपी की तरफ से काउंटर ये है कि जो जेन्युइन हिंदू इमिग्रेंट्स बांग्लादेश से बंगाल में आए हैं और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के प्रोविजंस के तहत कवर्ड हैं, उनको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है. लेकिन ये अब देखने वाली बात होगी संतोष जी कि इन दोनों खेमों में से कौन अपना नैरेटिव वोटर्स तक पहुंचा पाता है और किसको वोटर्स इवेंचुअली, जब दो फेज का इलेक्शन होगा, किसमें वोटर्स ज्यादा अपना ट्रस्ट रिपोज करते हैं.
बिल्कुल अदिति जी, लेकिन एक बड़ा मुद्दा और आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार लंबे समय से पश्चिम बंगाल के प्रशासन पर, ममता बनर्जी सरकार के कामकाज पर कई तरह के सवाल खड़े करता रहा है। वहां जिस तरह से हिंसक घटनाएं होती रही हैं पिछले कुछ वर्षों के दौरान चुनाव के बाद, तो भाजपा का एक नैरेटिव है कि ममता बनर्जी के शासन में बंगाल की पुलिस और बाकी जो एजेंसियां हैं राज्य सरकार की, वो बदले की भावना से कार्रवाई करती रही हैं। वहीं ममता बनर्जी ये आरोप लगाती हैं जो केंद्र की जांच एजेंसी हैं, कई बार ईडी का जिक्र आता है, सीबीआई का जिक्र आता है या अन्य केंद्र की जांच एजेंसी का सवाल आता है, वो उन पर केंद्र सरकार के दबाव में कार्रवाई करने का या बदले की कार्रवाई करने का आरोप लगाते हैं। इस नैरेटिव को दोनों ही राजनीतिक दल किस तरह से अपने अपने वोट बैंक को एड्रेस करने की कोशिश करती है इन मुद्दों को उठाकर?
देखिए, जो आपने आईपैक का जिक्र किया वो बड़ा मुद्दा बना था. आपको याद होगा कि जब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम पोल स्कैम के मामले में आईपैक के ऑफिस में रेड डालने गई थी, तो वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद वहां आ गई थी और उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स को आईपैक के ऑफिस से सीज करके अपनी कस्टडी में ले लिया था. और ये कहा गया था कि ये राज्य की जो अधिकार क्षेत्र है उसका हनन हो रहा है. उसके बाद आज हम बात कर रहे हैं, सुबह हमने देखा कि ईडी की एक टीम ने डिप्टी पुलिस कमिश्नर जो हैं बंगाल में उनके भी प्रेमाइसिस पे रेड्स करी हैं. वो भी एक ऑनगोइंग मनी लॉन्ड्रिंग केस में चल रहा है. और अभी हाल ही में, कुछ पिछले दिनों में, ये भी खबरें आई हैं कि रिकॉर्ड डिप्लॉयमेंट इस बार हुआ है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का असेंबली इलेक्शन करवाने के लिए बंगाल में, जो कि इलेक्शन कमीशन का अधिकार क्षेत्र है. इलेक्शन कमीशन को ये मैंडेट है कि फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने के लिए वो जितने पर्सोनल डिप्लॉय करने को कहे सरकार को, वो सरकार को करने पड़ते हैं. तो हमारी जानकारी ये है कि करीब 2.4 लाख के करीब CAPF पर्सोनल इस बार इलेक्शन के लिए वहां भेजे गए हैं. इसमें कोई 2500 कंपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की हैं और वो पोलिंग बूथ्स और जनरली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करेंगी जब अप्रैल 23 और अप्रैल 29 को दो फेज का इलेक्शन होगा. लेकिन जो लार्जर इश्यू है, जैसे तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हमेशा ये बात आती है कि चुनाव जब भी शुरू होते हैं तो एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत सेंट्रल एजेंसीज प्रोब शुरू कर देती हैं. भाजपा की तरफ से बात आती है कि सेंट्रल एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, कि लॉ मस्ट फॉलो इट्स कोर्स. भाजपा कहती है कि जब लॉ इंप्लीमेंट करने का सवाल आता है तो आप ये नहीं देख सकते कि किसी प्रदेश में चुनाव है या नहीं है, क्योंकि हमारे देश में तो हर वक्त कोई ना कोई चुनाव चलता रहेगा। तो ये काउंटर नैरेटिव्स और काउंटर क्लेम्स की जो राजनीति है, ये बहुत बहुत हीटेड हो चुकी है बंगाल में। इस बार जो हमने लेवल ऑफ बिटरनेस और लेवल ऑफ पॉलिटिकल अटैक दोनों तरफ से देखा है, वो बहुत ही तल्खी भरा है संतोष जी। और अब हमें ये भी देखना है कि भाजपा के लिए, अगर आप पॉलिटिकली एनालाइज करें, तो बंगाल का ये इलेक्शन मेक और ब्रेक इलेक्शन है। भाजपा, हम सब जानते हैं, बहुत देर से वहां इनरोड्स बनाने की कोशिश कर रही है, और ये भी आम सहमति है कि ममता बनर्जी की पैंठ बंगाल में अभी भी बनी हुई है। भाजपा को ये लगता है कि इस बार अगर वो अपना पूरा का पूरा पावर और पूरा का पूरा एनर्जी बंगाल में झोंकते हैं तो शायद उनको पॉलिटिकल गेन्स मिलें, क्योंकि हमने पिछली बार देखा था कि 3 सीटों से सडनली जंप करके 77 सीटों पे भाजपा आ गई थी। हालांकि अभी जो लास्ट लोकसभा इलेक्शन हुए हैं वहां भाजपा को थोड़ा झटका लगा था, लेकिन भाजपा की इंटरनल स्ट्रेटजी के तहत ये माना जा रहा है कि अगर इस बार पूरी एनर्जी के साथ ममता बनर्जी को चैलेंज किया गया तो ये एक अच्छा मौका भाजपा के लिए हो सकता है। वहीं ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि कैसे एंटी इनकम्बेंसी को एड्रेस करेंगी, क्योंकि वो भी एक इशू है ग्राउंड लेवल पर। भाजपा के नेताओं ने बहुत इल्जाम लगाए हैं ममता बनर्जी की रेजिम पर कि सिंडिकेट राज चल रहा है, कुछ भी गुंडों को कट दिए बिना वहां पूरा नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीचेस में इस शब्द का इस्तेमाल किया है कि वहां तो कट देने की राजनीति चल रही है। महिला सुरक्षा वहां एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम भूल नहीं सकते कि आरजी कार में जो हुआ, और अभी जितना जस्टिस का उम्मीद था उतना मिला नहीं है। उसके बाद भी बहुत सी महिला सुरक्षा को लेके चैलेंजेस बंगाल में बने हुए हैं। अब ये लेटेस्ट जो मुद्दा आ गया है संतोष जी, जो मुझे लगता है एक नया एडिशन है, महिला आरक्षण का जो पिच पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्सनली खड़ा कर दिया है कल राष्ट्र को संबोधित करके, इसके साथ भी तृणमूल कांग्रेस को लड़ना होगा। और आज ही मैं देख रही थी ममता बनर्जी का भी एक बयान आया कि तृणमूल कांग्रेस के तो ऑलरेडी 37% जो लोकसभा एमपीज हैं वो महिलाएं हैं। तो ये काउंटर नैरेटिव्स, जैसा आपने अपने वक्तव्य में भी कहा, अभी जारी हैं, और इस वक्त हम इतना ही कह सकते हैं कि दोनों साइड्स अपनी तरफ से अपना पूरा इमोशनल, मेंटल और साइकोलॉजिकल सारी की सारी एनर्जीज चुनाव में झोंक रहे हैं।
पश्चिम बंगाल में नो डाउट कि महिला मतदाता जीत हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी जो संदेशा देना चाहती है, और ममता बनर्जी के नेतृत्व में पूरी की पूरी तृणमूल कांग्रेस जो संदेशा देना चाहती है, किस तरह से ये पश्चिम बंगाल की महिला मतदाताओं तक अपने संदेशे को ग्राउंड जीरो तक डिलीवर कर पाने में सक्षम हो पा रही है?
देखिए, प्रधानमंत्री का कल का संबोधन बहुत महत्वपूर्ण था। वो सिंपली इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि आज तक जब जब प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम कोई संदेश हुआ है, या तो राष्ट्रीय महामारी के टाइम हुआ है, हमने कोविड-19 पैंडेमिक में देखा उन्होंने बहुत बार आके राष्ट्र से संवाद किया, उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम देखा उन्होंने आके पूरे राष्ट्र को संबोधित किया, डीमोनेटाइजेशन के टाइम उन्होंने संबोधित किया। जब जब राष्ट्र में ट्रांसफॉर्मेटिव डिसीजंस या बहुत रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स बीजेपी लेड एनडीए ने घोषित किए हैं, तब तब प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से संवाद किया है। अब आप देखिए कि उसी कड़ी में अगर प्रधानमंत्री महिला आरक्षण पर राष्ट्र से संबोधित हो रहे हैं तो कितना बड़ा वो पॉलिटिकल सिंबोलिज्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं देश की आम जनता को कि हमारे लिए महिला आरक्षण उतना ही बड़ा मुद्दा है जितना कि कंट्री के भलाई के लिए कोई बड़ा रिफॉर्म करना। तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा जो प्रधानमंत्री का डिसीजन कल रहा कि इस मुद्दे पे वो बात करेंगे देश से, ये अपने आप में बहुत बड़ा सिग्नल देश की महिलाओं के लिए है। उन्होंने माफी मांगी कि उनकी सरकार शॉर्ट ऑफ नंबर्स होने की वजह से 66% उनको वोट नहीं मिले, विधेयक गिर गया। तो उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि हम आने वाले वक्त में सारे रोड़े जो इस बिल के सामने हैं वो हटाएंगे और अपना जो वादा है देश की महिलाओं से वो पूरा करेंगे। जहां भाजपा विपक्ष पे ये इल्जाम लगाएगी कि महिला आरक्षण का विरोध कर रही है विपक्ष, वहीं हमने देखा कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने आज ट्वीट करके ये बताया कि टीएमसी के तो ऑलरेडी 37% सांसद महिलाएं हैं लोकसभा में, और उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के 12% हैं। तो इस किस्म का नैरेटिव ममता बनर्जी की तरफ से रेज किया जाएगा इस चीज को काउंटर करने के लिए।
बिल्कुल अदिति जी, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से जुड़े तमाम मुद्दों और चुनाव आयोग की तैयारियों को लेकर आपने हमारे श्रोताओं के सामने जो तमाम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में।